Parakritan madbandham param brahmanarakriti saundarya sar sarvasvam vande nandatmajam maha prapanna parijataya totra vetre kapanaye jnanamudraya krishnaya gitamruta duhe Vasudevasutam devam Kansachanuramardhanam Devaki paramanandam Krishnam vande jagat Vanshi Vibhushitkara Navaniradabha Pitambara Daruna Bimbaphala Darushtha Puranendu Sundara Mukhat Aravinda netra Krishna param kimapi tatva aham na jane yam pravrajantam anupetam peta krityam dvaipayano virah katar Ajuhav putreti tanmayataya tarva abhinedu tvam sarva bhutaridayam munimanatosmi prachodita jena pura sarasvati vitanvata jasya satim smritim hridi Svalakshana pradurabhut kilasyata Same rishinam rishabh prasidata Bhurter mahadviyah imapuro vibhu Nirmaya shete yadmusha purusha Bhunter gunan shodash shodashatmaka Solanka Srishta Bhagavan Vachansi Me Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo 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 Pankajanabhaya Namo Pankaj Maline Namo Pankaj Netraya Namaste Pankajandre Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः हरे कृष्ण तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 6 दिवसीय भगवत गीता कोर्स जिसे आत्मअन्वेषण की यात्रा कहते हैं इस आत्मअन्वेषण की यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस यात्रा का आज पांचवा दिन है। चौथे दिन अर्थात कल हमने प्रकृति, काल और कर्म के बारे में श्रवण किया। जैसे कि आप सब कल जाने, प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति के बारे में जाना, काल के बारे में जाना, भगवान ही काल का रूप लेकर इस संसार में पापियों का विनाश करते हैं। और काल बहुत ही तेज गति से बीत रहा है, इस बीतते हुए काल का सदुपयोग करते हुए हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए। अक्सर हम हमारे बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्म बधाई, और बहुत बहुत उत्सव मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, परंतु बुद्धि से विचार किया जाए तो उस दिन रोना चाहिए सब लोग को मिलकर, क्योंकि काल सबकी गति को प्रति मिनट प्रति सेकंड काट रहा है, सबको यह काल खा रहा है, निगल रहा है। और उस खाते हुए काल में जब हमारे बच्चे के एक साल बीत जाते हैं तो हम सबको एकत्रित करते हैं और बहुत बहुत खाना खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे इस पर विचार करते हैं। वास्तव में यह बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे के और हमारे जीवन में एक काल, एक साल बीत गया। जीवन की अवधि जो ब्रह्मा जी द्वारा हमें दी गई है, उन अवधि में से एक साल बीत गया, ये दुख की बात है, परंतु हम लोग खुशियां मनाते हैं। भगवत गीता इसे सतर्क करती है, भगवान सबको सबको समझाते हैं, इस कीमती समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए धन खर्च करके आप और कुछ खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो, गाड़ी, बंगला, कपड़े खरीद सकते हो, परंतु एक सेकेंड करोड़ों रुपया देने के बाद भी खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार समय चला गया तो चला गया, वापस कभी नहीं आता है। जैसे कि आज 9 तारीख 10वां महीना, 9 तारीख 10वां महीना 2007 हमारे जीवन में कभी नहीं आने वाला है। एक बार बीत गया तो वह बीत गया, इसलिए इस बीतते हुए काल का सदुपयोग करना चाहिए। और समय का सदुपयोग है भगवान श्री कृष्ण ने गाया हुआ गीत भगवत गीता को सुनना, भक्तों का संग करना, भगवान का नाम लेना, यह है समय का सदुपयोग। तो कल हमने इस काल के बारे में जाना और इस काल का दर्शन साक्षात अर्जुन ने कल किया और आप सब लोगों ने भी किया। तत्पश्चात हम कर्म के बारे में आप सबको बता रहे थे, परंतु समय कम होने के कारण हम कर्म के टॉपिक को कुछ अधूरा छोड़ दिए थे। कर्म शब्द सब लोग सुने हैं और कर्म के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर समझाते हैं। कर्म का सीधा अर्थ होता है कार्य, कर्म अर्थात कार्य। हम जब भी कार्य करते हैं, एक सिद्धांत है शास्त्र का, यह सिद्धांत है किसी भी कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि कल हमने आपको समझाया था, किसी भी कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं, यह कार्य किसी अगले कार्य की प्रतिक्रिया है। इस समय के अगले समय में हमने कुछ कार्य किए थे, उसकी प्रतिक्रिया वर्तमान में चल रही है। या तो इस प्रकार से हो सकता है, या तो दूसरी प्रकार से आप यह समझ सकते हो कि वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य की प्रतिक्रिया आगे आने वाले समय में होगी। ये दो में से एक हो सकता है। हम यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं यह भूतकाल के कर्मों का फल है, या वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं ये एक नया कर्म बांध रहे हैं जो भविष्य काल में एक फल मिलेगा। इस चीज को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं किम कर्म किम कर्मेति कवयो यत्र अपि मोहिता। कौन से जन्म के किस कर्म की सजा कौन कभी भोगतेगा, इस बात को बड़े बड़े कवि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते हैं और मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभम। कोई नहीं समझ सकता है इस कर्म की गति को। इसलिए सदैव 24 घंटा हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कार्य हो वह अच्छे हो। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। जैसे साधारणतया सब लोग दो प्रकार के कर्म जानते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म का अर्थ होता है भगवान के दिए हुए नियमों को तोड़कर जो कर्म किया जाता है उसे बुरा कर्म कहते हैं। भगवान ने कई सारे नियम दिए हैं इस सृष्टि में रहने के लिए, परंतु उस नियम का उल्लंघन करके जो हम कर्म करते हैं उसे बुरे कर्म कहते हैं और भगवत गीता उसे विकर्म की संज्ञा देती है। और अगर इस प्रकार से बुरे कर्म किया जाए विकर्म किया जाए तो उनकी विपरीत सजा भोगतनी पड़ती है। बुरे कर्म का अर्थ होता है चोरी करना, डाका डालना, किसी की हत्या कर देना, किसी का बलात्कार करना, किडनैप कर लेना, ये सब बुरे कर्म है। अगर इस प्रकार से कोई बुरे कर्म करता है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भगवान उसे नरक में इसकी सजा देते हैं। तो ये है बुरे कर्म। और अच्छे कर्म का अर्थ होता है किसी को दान देना, कोई हॉस्पिटल बना देना, किसी अंधे को रोड क्रॉस करवा देना, ये सब अच्छे कर्म माने जाते हैं। और इस अच्छे कर्म के फल स्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अच्छा कर्म करता है, किसी को दान करता है या हॉस्पिटल बनाता है, दवाई बांटता है, तो उसका पुण्य बनता है और उस पुण्य के आधार पर उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। सबकी जानने की इच्छा होगी स्वर्ग लोक में ऐसा क्या है, तो गीता में भगवान कहते हैं तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वे स्वर्ग लोक बहुत ही विशाल है। स्वर्ग में जितने भी भोग ऐश्वर्य सुख विशाल मात्रा में है। और यहां पर अगर कोई पुण्य करता है तो पुण्य को प्राप्त करके वे इस विशाल सुख को भोगत सकता है। परंतु आगे भगवान दुख के साथ कहते हैं कि बहुत बड़ा विशाल सुख भोगने के बाद भी उस पुण्यशाली व्यक्ति के जब पुण्य खत्म हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। जैसे आपका बैंक में जितना बैलेंस हो और धीरे धीरे करके आप निकाल दो और बैंक बैलेंस जब जीरो हो जाता है फिर बैंक से कुछ नहीं निकाल सकते हो, ठीक उसी प्रकार जितना पुण्य हम करते हैं उतने देर तक स्वर्ग में रहने को मिलता है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है वैसे उस व्यक्ति को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर पटका जाता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बुरे कर्म भी बुरे हैं और अच्छे कर्म भी बुरे हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा आप पुण्य कर्म करो मिलता स्वर्ग है और स्वर्ग से बाद में पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और आपने कल प्रकृति का वर्णन में सुना कि 84 लाख की योनि में मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिस मनुष्य शरीर से हम इस 84 लाख की योनि से बाहर निकल सकते हैं। तो वास्तव में मनुष्य 84 लाख की योनि से बाहर निकलने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। परंतु अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो इस 84 लाख की योनि में बंध जाते हैं। अगर अच्छे कर्म भी करते हैं फिर भी हम इस 84 लाख की योनि में बंध जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है तो अब क्या किया जाए। अच्छे कर्म भी 84 लाख की योनि में घुमाते रहेंगे और बुरे कर्म भी घुमाते रहेंगे, तो अब मैं सोच रहा हूं मैं अच्छे कर्म भी नहीं करूंगा और बुरा कर्म भी नहीं करूंगा। लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन धारण करते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं। परंतु भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना प्रयास कर लो कर्म नहीं करने का, फिर भी कर्म करना ही पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। सांस लेना भी एक कर्म है, तो बिना सांस को कोई रह सकता है? नहीं, कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक सेकेंड भी कर्म किए बिना नहीं रह सके। तो अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया हमें। बुरे कर्म भी बुरे हैं, अच्छे कर्म भी बुरे हैं, और कर्म नहीं करना यह तो हो ही नहीं सकता, तो अब क्या करना है? तब भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण अपि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अतः है अर्जुन, इस संसार में रहने वाले लोगों को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, इस 84 लाख के चक्कर से मुक्त होने के लिए अकर्म करने चाहिए। अकर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक कार्य, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे अकर्म कहते हैं। जब हम संसार में इस प्रकार की बातें करते हैं कि अगर 84 लाख के चक्कर से मुक्त होना है, बंधन में बंधना नहीं है, तो कृष्ण के लिए कार्य करो, कृष्ण के लिए कर्म करो, तो लोग कहते हैं अगर हम भी कृष्ण के लिए सब कुछ करने लगेंगे तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हमें काम ही करना छोड़ देंगे, केवल कृष्ण के लिए ही करेंगे, तो क्या होगा घर वालों का और हमारा? परंतु गीता में भगवान कहते हैं, अकर्म का अर्थ ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए कर्म करते हुए हमारा कर्म छोड़ दो। अकर्म का अर्थ है हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या घर पर रहते हैं, ये सब कार्य करने ही हैं, परंतु यह सब कार्य करते करते भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना, इसे अकर्म कहा जाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करो और मुझे अर्पण करते हुए इस संसार में काम करो। यत यत करोषि यत अश्नाशि यत जोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्य मत अर्पण। हे अर्जुन, तुम चाहे तपस्या करो या बिजनेस करो, जो भी कार्य करो, मुझ कृष्ण को मुझे अर्पण करके करो। अगर तुम मुझे अर्पण करके वह कार्य करोगे तो कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, और बिना कर्म के बंधन में फंसे 84 लाख के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। और भी भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहत्यम अश्नामी प्रयता आत्मता। ये अर्जुन, तुम्हें जो भी खाना है खाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परंतु मुझे अर्पण करके खाओ। भगवान को क्यों अर्पण करना है? क्योंकि यह संसार भगवान से प्रकट हुआ है, यह संसार भगवान की प्रॉपर्टी है। कल हमने सुना यह अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से प्रकट होते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड, यह दुनिया, यह संसार भगवान की है। तो भगवान की यह वस्तु है, तो यह वस्तु भगवान को अर्पण करके हमें लेनी चाहिए। परंतु हम लोग इतने मूर्ख बनकर बैठे हैं कि यह घर मेरा है, वह गाड़ी मेरी है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते रहते हैं। वास्तव में यह सब कुछ भगवान का है। हम तो यहां से वहां भगवान की चीज यहां से वहां करते हैं, वहां से यहां करते हैं और हमारा मान बैठते हैं। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक सेठ था, उसे अपने घर पर एक बेड बनाना था, बेड बनाने के लिए अब रेडीमेड बेड लेने जाओगे तो बहुत वीक आती है, तो उसने सोचा कि मैं मिस्त्री को घर पर लाऊंगा और मिस्त्री को जो भी सामान होगा मैं दे दूंगा और वे मुझे बेड बनाकर देगा। तो उसने एक मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री ने लिस्ट बना दिया, इतना लकड़ा लाना है, इतने स्क्रू लाने हैं, इतने खिले लाने हैं, इतने फेविकोल लाना है, ये सब कुछ लिस्ट देकर सेठ ने सारा सामान उस मिस्त्री को दे दिया। और उस मिस्त्री ने कहा कि यह बेड बनाने के लिए मुझे 10 दिन लगेंगे। सेठ ने कहा ठीक है, तुम मेरे घर पर रहो और 10 दिन में यह बेड तैयार कर दो। अब सेठ तो रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए सुबह निकल जाते थे और शाम को घर आते थे, तो रोज सुबह निकलते थे शाम को घर आते थे और रोज देखते थे कि धीरे धीरे उनका वो बेड बन रहा है। तो 4, 5, 6 जब 10 दिन हो गए, 10वें दिन सेठ जब घर पर आ रहे थे तो वो मिस्त्री उस बेड को लेकर बाहर निकल रहा था। तो सेठ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्त्री ने कहा कि इस बेड को मैं मेरे घर पर लेकर जा रहा हूं। सेठ ने कहा क्यों? मिस्र ने कहा यह बेड मेरा है, इसलिए इस बेड को मैं मेरे घर पर लेकर जा रहा हूं। सेठ ने कहा अरे सामान मेरा है, लकड़ा मेरा है, स्क्रू मेरा है, फेविकोल मेरा है और तुम कह रहे हो ये बेड आपका है? अब आप लोग ही बताओ वो बेड सेठ का है या उस मिस्त्री का है? किसका है? ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब भगवान की है। हमने अपने शरीर से कुछ निकाला है, जो डायमंड के बिजनेस करते हैं एक डायमंड भी अपने शरीर से निकाला है, जो कपड़े का बिजनेस करते हैं एक चिथड़ा भी अपने शरीर से निकला है, यह सब कुछ भगवान से निकला है, भगवान की संपत्ति है। हम यहां का वहां करते हैं, वहां का यहां करते हैं, उतने में हम समझ लेते हैं कि यह सब हमारा है, परंतु तत्व से अगर देखा जाए तो यह सब कुछ भगवान का है और भगवान का होते हुए भी हम यूज करते हैं, हम हमारा मानते हैं, फिर भी भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं कि ये आप खूब यूज करो परंतु मुझे अर्पण करके यूज करो ताकि कर्म का बंधन न लगे। अगर मुझे अर्पण करके इन वस्तु को यूज नहीं करोगे तो बहुत बड़े कर्म के बंधन में फंस जाओगे। इसलिए संसार में हम जो कुछ कार्य करते हैं, चाहे कुछ खाते हैं पीते हैं, यह सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। अगर भगवान को बिना अर्पण किए करे खाए तो वास्तव में हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें जो भी कार्य करने हैं मेरे लिए कार्य करो। भगवान के लिए अगर कार्य करते हैं तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर खड़े रहकर जब पाकिस्तान वालों को या सामने वाले देश का को गोली मारता है तो सरकार के द्वारा उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, परंतु एक चोर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है गोली से तो उस चोर को जेल में डाला जाता है। अब देखिए दोनों व्यक्ति ने गोली मारी है और दोनों व्यक्ति ने गोली के द्वारा व्यक्ति को मारा है, परंतु एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिल रहा है और एक व्यक्ति को जेल मिल रही है, अंतर क्या है? चूंकि वह सैनिक सरकार के लिए गवर्नमेंट के लिए गोली मार रहा है इसलिए उसे गोल्ड मेडल मिला, परंतु वह चोर अपने लिए किसी व्यक्ति को गोली मारा इसलिए उसे जेल मिली। ठीक उसी प्रकार यह गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट भगवान के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है, अर्थात यह सभी कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान का धाम उसे प्राप्त होता है। परंतु भगवान के लिए कर्म न करते हुए अपने लिए कोई कर्म करता है तो उसे नरक रूपी जेल रूपी नरक प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी कर्म करना है मेरे लिए कर्म करो। उस कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन ने लाखों लोगों को मारा और दुर्योधन ने भी लाखों लोगों को मारा, परंतु अर्जुन को सद्गति प्रदान हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशानुसार कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लोगों को मारा था। तो हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं कृष्ण को अर्पण करके करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, तब हम कर्म के बंधन में तो नहीं फंसेंगे, परंतु बेनिफिट यह मिलेगा, जैसे उस चोर ने किसी व्यक्ति की हत्या की तो उसे जेल मिली, और उस सैनिक ने किसी व्यक्ति को मारा तो उसे जेल नहीं मिली, वह जेल से बच गया और उल्टा ऊपर से उसे गोल्ड मेडल मिला। ठीक उसी प्रकार हम अगर हमारे लिए कार्य करते हैं तो हमें नर्क में जाना पड़ेगा, परंतु हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम नर्क से तो बच ही जाते हैं, परंतु भगवान एक बेनिफिट देते हैं कि भगवान हमको अपने धाम में बुला लेते हैं। तो अकर्म करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं और भगवान के धाम में जाने का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हम सबको विकर्म नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। और अकर्म का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया कर्म। तो इस प्रकार से कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या है। कुछ लोग प्राय कहते हैं कि प्रभु हमारे कर्म में जो लिखा है वह तो होने ही वाला है, जो हमारे कर्म में लिखा है वह तो होने ही वाला है, तो फिर हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है, घर पर बैठे रहेंगे सब कुछ मिल जाएगा, घर पर बैठे यदि कर्म में लिखा है तो मिलेगा। तो यह जानना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में हमारे कर्म में जो लिखा है वही होने वाला है, परंतु साथ साथ भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें प्रदान की है। जैसे हमारे कर्म के अनुसार आज हमें खाने को क्या मिलने वाला है वे आपके सामने आ जाएगा थाली में। आज आप सबके कर्म में पूरी सब्जी जो भी लिखा है आपके सामने आ जाएगा, परंतु उसे उठाकर मुंह में डालना इतनी स्वतंत्रता आपके हाथ में। कर्म के अनुसार भोजन आपके सामने है, परंतु वो भोजन का निवाला आपके मुख में डालना ये आपके हाथ में। और एक दृष्टांत देते हैं, जैसे एक गाय है, गाय को किसी 2 मीटर रस्सी के साथ किसी खिले के साथ बांधा जाए तो गाय के कर्म में लिखा है कि वह 2 मीटर तक किसी भी जगह पर घूमे, परंतु गाय के पास स्वतंत्रता है कि वह 1 मीटर दूर बैठ सके या आधा मीटर दूर रहे या 2 मीटर दूर रहे। तो इस प्रकार से हमें जीवन में सब कुछ कर्म के फल के ऊपर डिपेंड है, परंतु उस कर्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रयास उस कर्म में जो लिखा है कर्म के फल रूप में जो है वे प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग तो इस जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया करते हैं, धन प्राप्ति में बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धन कमाने के लिए पड़े रहते हैं, ओवर टाइम करते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है वही मिलने वाला है। इसलिए परिश्रम नहीं करना चाहिए, प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। वे दृष्टांत देते हैं, जैसे मान लो किसी ने विदेश से आपको कुछ पार्सल में भेजा है, पार्सल में विदेश से कुछ आया है, ठीक उसी प्रकार पिछले किए गए कर्म के अनुसार फल स्वरूप हमारे कर्म में कुछ आने वाला है। तो विदेश से कुछ पार्सल आया है तो हमें चाहिए कि घर से जाकर उस पार्सल की ऑफिस में जाए और उस ऑफिस में जाकर उस पार्सल को छुड़ाकर हमारे घर पर लेकर आए। व्यक्ति को इतना कर्म करना चाहिए, इतना श्रम करना चाहिए, परंतु इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि उसे वही पार्सल मिलने वाला है, परंतु उस पार्सल को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर खड़े रह जाते हैं और सब फ्लाइट में देखते हैं, इस फ्लाइट में मेरा पार्सल आया, इस फ्लाइट में आया, ये लगेज में आया, वो लगेज में आया, सुबह से लेकर शाम तक वो पार्सल ढूंढने में रहता है और परंतु शाम को वो पार्सल से प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में हमारे कर्म में जो लिखा है वही मिलने वाला है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास होना चाहिए, परिश्रम नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं, अगर हम विकर्म करते हैं, तो पुण्य के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा हम बुरे कर्मों को काट सकते हैं? अच्छे कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा हम पाप को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। यदि हम पुण्य करते हैं तो पुण्य को भी भोगतना पड़ता है, यदि हम पाप करते हैं तो उस पाप के फल को भी हमें भोगतना पड़ता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है महाराज नृक की। महाराज नृक प्रतिदिन लाखों लाखों गाय का दान करते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे और लाखों लाखों गाय का प्रतिदिन दान करते थे। एक समय की बात, महाराज नृक ने कई सारी गायों का दान किया, परंतु एक गाय उस ब्राह्मण के घर से रास्ता भूलकर फिर से महाराज नृक के महल में आ गई, और दूसरे दिन महाराज नृग ने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। जब वह ब्राह्मण ढूंढने लगा कि मेरी गाय कहां पर गई, गाय कहां पर गई, तो उसने, उस ब्राह्मण ने वह गाय दूसरे ब्राह्मण के वहां पर देखी। तो वह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के वहां गया और उसके साथ झगड़ने लगा कि यह गाय मेरी है। तो दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, ये गाय मुझे राजा ने दान में दी है, इसलिए ये गाय मेरी है। तो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। झगड़ते झगड़ते राजा नृग के पास आए। राजा नृग ने कहा कि ये गाय उसे दे दो, इस गाय के बदले में मैं हजारों गाय तुम्हें देता हूं। परंतु ब्राह्मण तो इतने जीत पर आ गए कि हजारों नहीं लाखों गाय भी मुझे दे दो फिर भी हम नहीं लेंगे, मुझे यही गाय चाहिए। तो इस प्रकार से उस महाराज नृग के इस दान के कारण दो ब्राह्मण में झगड़ा हुआ। इस झगड़े के फल स्वरूप महाराज नृग का जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद महाराज नृग को हजारों साल के लिए इस ब्राह्मण के झगड़े के फल स्वरूप एक कुएं में गिरगिट बनना पड़ा, छिपकली बनना पड़ा। अब देखिए, जो राजा प्रतिदिन लाखों गायों का दान किया है, उस राजा को भी एक कुएं में छिपकली हजारों साल तक बनना पड़ा। ये पाप के कारण, ब्राह्मणों के का झगड़ा लगवाने के कारण, और क्योंकि उसने दान किया था इसलिए गिरगिट बनने के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो अगर हम पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भी भोगतना पड़ता है, अगर हम पाप करते हैं तो पाप के फल को भी हमें भोगतना होगा। प्रैक्टिकल दृष्टांत अगर आपको चाहिए तो आजकल हम देखते हैं कुछ लोग ऐसा गलत काम, ऐसा पाप करते हैं, ऐसा घृणित कर्म करते हैं, उस कर्म के फल स्वरूप उसे दूसरे जन्म में कुत्ते का शरीर मिलता है। परंतु उसने कभी कभी जीवन में दान पुण्य किया है, इसलिए दान पुण्य के कारण वे कुत्ता तो बनता ही है, परंतु अमीर घर में कुत्ता बनता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो मर्सिडीज में घूमते हैं, एसी में। इसका कारण यही है कि ये पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था और पुण्य के साथ साथ पाप भी किया था, इसलिए दोनों फल एक साथ में मिला और एक अमीर घर में वह कुत्ता बना। तो पाप और पुण्य, ये दोनों के फल निश्चित रूप से भोगतने पड़ते हैं। और हम आगे बढ़े, कुछ लोग कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, ये सत्य बात है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, कितने लोग मानते हैं ये सत्य है? ठीक, हां यह सत्य है, मनुष्य अपना भाग्य खुद लिख सकता है। क्योंकि भाग्य क्या है? भाग्य अपने ही कर्म का फल है। पूर्व काल में हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फल स्वरूप हमारा भाग्य बनता है। अगर आप अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना प्रारंभ करो। अगर अच्छे कर्म हम करते हैं तो हमारा भाग्य बन सकता है। इसलिए यह सत्य बात है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, परंतु अपने भाग्य का विधाता तब बनता है जब वे अच्छे कर्म करता है। जब वे अच्छे कर्म करता है तब उसका अच्छा भाग्य बनता है और उस कर्म उस फल स्वरूप वह सुख भोगता है। परंतु अगर वह बुरा कर्म करता है तो उस बुरे कर्म के फल स्वरूप उसे बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। कभी कभी लोग बहुत दुखी होते हैं, अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मवश पाप कर्मवश लोग बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर पूछते हैं कि क्या हम इस दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वे पाप के फल प्रारंभ हो गए हैं, इस पाप के फल को इस पाप के दुख से मुक्त हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ये तो वैसा ही है जैसे 25वें माले की बिल्डिंग से कोई जंप करे, 25वें माले की बिल्डिंग से आत्महत्या करने के लिए कोई छलांग मारे और छलांग मारने के बाद सोचे कि नहीं मारना था परंतु मार दिया। छलांग मारने के बाद अगर कोई सोचे तो फिर वह बच नहीं सकता है। छलांग उसने लगा दी है तो फिर उसे पटकना है और लगना निश्चित रूप से है। परंतु उसने जब छलांग मारी उसके पहले उनके पास स्वतंत्रता थी, छलांग मारा जाए या न मारा जाए। ठीक उसी प्रकार कर्म करने से पहले हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। कर्म हो जाने के बाद उस फल को निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यस्त्विंद्र दोप मत वंद्र महोस्व कर्म बंधान रूप फल भाजन मात नोति। ब्रह्मा जी कहते हैं हम जैसे मनुष्य नहीं, इस मनुष्य से लेकर हमसे कई गुना सर्वश्रेष्ठ देवता और देवताओं के राजा इंद्र को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। छोटे से छोटे शूद्र मनुष्य से लेकर इंद्र तक सभी लोगों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे इंद्र ने अहल्या के साथ संग किया तो उसके शरीर में सहस्त्र आंखें आ गई और इंद्र को भी सुअर बनना पड़ता है अपने फल स्वरूप। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सब लोग को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, परंतु ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे तो उसने पूर्व जन्म में कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों न किए हो और उस पाप के फल दुख प्रारंभ क्यों न हो गए हो, परंतु अगर वह भक्ति करते हैं तो भक्ति के द्वारा अपने कर्म के फल को काट सकता है और भक्ति के द्वारा अपने कर्म के फल को वैसे काट सकता है जैसे कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, जैसे किसी वृक्ष को समूल से मूल सहित उखाड़ कर फेंक दिया जाए, वैसे ही भगवान की भक्ति के द्वारा हम उस कर्म के फल को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हरे कृष्णा तो कर्म के फल को केवल भक्ति के द्वारा हम काट सकते हैं और उसे भोगने के द्वारा हम काट सकते हैं। अगर कोई जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो उसे भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के द्वारा बड़े बड़े दुख भी एक सरसों के दाने के समान हो जाते हैं। अगर किसी का पांव टूटना हो तो थोड़ा सा जख्म आकर वे दुख चले जाते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं। तो कर्म के फल को भक्ति के अलावा हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए निश्चित रूप से सबको अकर्म करना चाहिए अर्थात भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए। तो इस प्रकार यह कर्म का सिद्धांत है। वैसे तो गीता में भगवान कहते ही हैं कि इस कर्म के सिद्धांत को जानना चाहिए, परंतु इसे जानना बहुत मुश्किल है। तो इस कर्म के सिद्धांत को जानने के लिए एक छोटी सी कथा मैं आपको कह दूं। इस कथा के द्वारा आप जान सकते हो कि इस कर्म का सिद्धांत कितना सूक्ष्म है। यह कथा शास्त्र में दी हुई है और इस कथा के नायक हैं सदन कसाई। सदन नाम का एक व्यक्ति था जो जन्म से म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया था और वे कसाई था, परंतु वे स्वयं किसी प्राणी का वध नहीं करता था, क्योंकि अपने बाप दादा का बिजनेस था और म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया था, इसलिए उसे मांस बेचने का धंधा करना पड़ा, परंतु प्राणियों का वध नहीं करता था। कहीं से मरे हुए प्राणी का मांस लेकर आता और प्रतिदिन बेचता रहता था। उनके पास एक अद्भुत शालिग्राम शिला थी। उस शालिग्राम शिला ऐसी अद्भुत थी, अगर कोई व्यक्ति 5 किलो मांस लेने आता तो वह शालिग्राम शिला 5 किलो की हो जाती और 5 किलो मांस तोल कर वे दे देता। अगर कोई 2 किलो लेने आता तो वह शालिग्राम शिला 2 किलो की हो जाती। कोई 10 किलो लेने आता तो वह शिला 10 किलो की हो जाती, क्योंकि सदन कसाई की उस शालिग्राम शिला में बहुत श्रद्धा थी। यद्यपि वह जानता नहीं था कि यह भगवान होते हैं ये और इसकी पूजा की जाती है, परंतु बहुत श्रद्धा थी और श्रद्धा के साथ उस शिला को वह रखता था। एक दिन की बात, वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि यह कसाई भगवान की यह शालिग्राम शिला के द्वारा मांस को तोल रहा है, यह तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इसलिए इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ये भगवान की शालिग्राम शिला है, ये शालिग्राम शिला तुम मुझे दे दो, मैं इसका पूजा पाठ करूंगा। तब ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को लेकर अपने घर चले गए और अपने घर जाकर सबसे पहले उसका अभिषेक किया। अभिषेक करके आरती की, भोजन प्रसाद अर्पण किया और ब्राह्मण सो गए। जब ब्राह्मण सो गए तो स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस पूजा पाठ से भी ज्यादा मैं उस सदन कसाई के पास सुखी हूं, क्योंकि वे भाव से मुझे, श्रद्धा के साथ मुझे रखता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ दो। अगर तुम मुझे उस कसाई के पास नहीं छोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। तो सुबह उठकर वे ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को लेकर उस सदन कसाई के पास आए और सदन कसाई को शालिग्राम शिला दे दी। और शालिग्राम शिला देते वक्त उस ब्राह्मण ने सारी कथा सुनाई कि जब मैं घर पर गया और शाम को भगवान स्वप्न में आए और उन्होंने यह कहा। जब सदन कसाई ने ब्राह्मण की यह कथा सुनी तो वे तो आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि मैं इतने सुंदर दिव्य भगवान के विग्रह से मांस को तोल रहा था। सदन कसाई के हृदय में बहुत बड़ा वैराग्य हुआ और उसी वक्त वे कसाई का बिजनेस छोड़कर, वे सब काम धंधा छोड़कर जगन्नाथपुरी भगवान के धाम में जाने के लिए निकल पड़ा। भगवान के धाम में जगन्नाथपुरी जाने के लिए जब निकल पड़ा, अब तो अगर जाना हो तो ट्रेन से हम जाते हैं, लेकिन उस वक्त सब चलकर जाते थे। तो चलते चलते जा रहा था तो रात हुई और रात को किसी के घर भिक्षा मांगने गया। तो जिसके घर में वे भिक्षा मांगने गया, एक स्त्री ने इस सदन कसाई को देखा और कहा कि आओ, घर पर आओ, हम तुम्हें भोजन देते हैं। सदन कसाई को भोजन करवाया और उस स्त्री ने कहा कि हे सदन, तुम इस घर पर ही रात को रुक जाओ, सुबह होते ही तुम चले जाना। इतना कह के वे स्त्री अपने कमरे में चली गई जहां पर उसका पति सो रहा था और ये सदन कसाई उस स्त्री के बाहर के रूम में सो गए। रात को 2 बजे वह स्त्री उस रूम से उठकर बाहर आई और सदन कसाई के सुंदर रूप को देखकर कहा कि तुम मेरे साथ भोग करो। तो सदन कसाई तो परम विरक्त हो चुका था, भगवान का भक्त हो चुका था। उन्होंने कहा, हे माँ, तुम ये क्या कह रही हो, तुम मेरे माँ समान हो और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम विवाहित हो, तुम्हारे पति अंदर सो रहे हैं। तब उस स्त्री को लगा कि लगता है कि ये मेरे पति से डर रहा है। और कामातुराणाम न भय न लज्जा, जब काम का वेग उमड़ता है तब किसी भी प्रकार की भय और लज्जा नहीं रहती है। वह स्त्री ने हाथ में तलवार ली और अंदर के कमरे में जाकर अपने पति का सर काट दिया। और अपने पति का सर काट कर सदन के पास आई और सदन को कहा कि तुम मेरे पति से डरते थे, मेरे पति के सिर को मैंने काट दिया, अब मेरे साथ भोग करो। सदन ने कहा कि मैं स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता हूं और मैं जा रहा हूं यह घर को छोड़कर। तब जैसे ही वह स्त्री ने देखा कि यह घर छोड़कर जा रहा है और पति की हत्या का आक्षेप मुझ पर लगेगा, तब स्त्री के पास तो बुद्धि होती है, क्या किया जाए। उस स्त्री ने अपने ही हाथ से अपने कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ कर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये मेरा बलात्कार कर रहा है। और उस वक्त पूरा गांव वहां पर एकत्रित हुआ और उस स्त्री ने कहा कि ये मेरा बलात्कार करना चाहता था और इसने मेरे पति का वध कर दिया। और उस वक्त क्योंकि वे भक्त था इसलिए कुछ नहीं बोला। पंच एकत्रित हुआ और पंच से निर्णय निकला कि इस सदन के दोनों हाथ काट दिए जाए, इसकी सजा ये है। तो सदन कसाय के दोनों हाथ काट डाले, लेकिन परंतु वे भक्त था इसलिए दोनों हाथ कट चुके थे, परंतु जगन्नाथपुरी भगवान के धाम में जाने के लिए निकल पड़ा। जब वे घूमते 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 जगन्नाथपुरी में पहुंचा तब साक्षात भगवान ने अपने पुजारियों को दर्शन देकर कहा कि इस जगन्नाथपुरी की बॉर्डर में एक ब्राह्मण आया है जिनका नाम है सदन, उस ब्राह्मण को तुरंत यहां पर पालखी में बिठा कर लेकर आओ। तब ये लोग पालकी लेकर गए और उस सदन कसाय को पालकी में बिठाकर भगवान के पास लाया गया। और भगवान का जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का विग्रह जब उस सदन कसाय ने देखा और देख कर ही मन में भाव उमड़ा और सब लोग हरि बोल कर रहे थे, इनका भी भाव हुआ हरि बोल बोलने का। और जैसे ही हरि बोल बोलने का भाव हुआ और वह टूटे हुए हाथ थे कटे हुए हाथ थे हरि बोल जैसे बोलने गया तो उनके दोनों हाथ आ गए। हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे।
आश्चर्य की घटना के उनके दोनों हाथ आ गए। जब उनके दोनों हाथ आए भगवान ने दर्शन दिया तब सदन कसाय के मुख से इतना ही निकला कि प्रभु प्रभु अगर आपको मुझे ये दोनों हाथ देने ही थे तो कटवाए क्यों, आपकी लीला अपरंपार है, कृपया करके इसका वृतांत बताइए। अब देखिए कर्म की गति कितनी न्यारी है। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने मुख से सदन कसाय को उनके पूर्व जन्म की कथा बताई कि इस प्रकार से यह कार्य क्यों हुआ। भगवान ने कहा कि सदन अगले जन्म में तुम वेद पाठी ब्राह्मण थे और वेदों का उच्चारण करते थे। चूंकि अगले जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण थे इसलिए इस जन्म में तुम कसाई तो बने परंतु ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें भक्ति भाव की भावना आई। तो एक समय की बात, अगले जन्म में तुम वेद पाठी ब्राह्मण थे और एक पेड़ के नीचे जब वेदों का मंत्र श्लोक पढ़ रहे थे उस वक्त एक कसाई के घर से एक गाय कैसे भी करके छूटकर भाग गई और वे कसाई उस गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और तुम उस वक्त वेद पढ़ रहे थे और तुम्हारे सामने से वह गाय निकली और एक गली में चली गई और पीछे पीछे वह गाय को मारने के लिए कसाय आ रहा था। तो वह कसाय ने देखा कि गाय कौन सी गली में गई होगी, वो भूल गया और उस वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण तुमने कहीं गाय को जाते हुए देखा। तो सदन ये जो ब्राह्मण था उसने कुछ बोला नहीं परंतु अपने हाथ से इशारा कर दिया कि वहां हे सदन तुमने कुछ नहीं किया था परंतु हाथ से इशारा करने के कारण इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काटने पड़े। यह है कर्म की गति। केवल हाथ दिखाने में, गाय के पीछे हाथ दिखाने में उनके इस जन्म में दोनों हाथ काटे गए। इतना ही नहीं और भी आगे वृतांत सुनाया कि आगे चलकर तुमने जब हाथ दिखाया तो वह कसाय उस गाय को पकड़ लिया और गाय को पकड़कर गाय का सिर काट दिया। और जिस कसाय ने उस गाय का सिर काटा वह गाय दूसरे जन्म में एक स्त्री बनी और जिस कसाय ने उसका सिर काटा था वह कसाय दूसरे जन्म में उसका ही पति बना और उन दोनों के कर्मवश उसने गाय का सिर काटा था इसलिए उस पत्नी ने दूसरे जन्म में अपने पति का सिर काट दिया। तो इस प्रकार से तुमने हाथ दिखाने के कारण तुम्हारे दोनों हाथ कटे और उनके एक दूसरे के सिर काटने के कारण सिर कटे। तो यह है कर्म की गति। हम कुछ भी करते हैं इस संसार में, कुछ भी कार्य करते हैं तो उनका प्रतिफल निश्चित है, उनका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए, हम जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे
हरे राम हरे
राम। तो यहाँ हमारा कर्म का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आज का विषय है योग, क्योंकि प्रश्न उत्तर करने चाहिए, परंतु आज के प्रवचन के बाद एक बहुत ही सुंदर ड्रामा है, नाटिका है। तो प्रश्न अगर आपके हो तो प्रवचन के बाद आप हमें मिल सकते हो। तो आज का विषय है योग, हम प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सभी मनुष्य को योगी बनना चाहिए। भगवान कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मति ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वियों से ज्ञानियों से सभी और सकाम कर्मियों से भी योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सभी मनुष्य को योगी बनना चाहिए। इस संसार में भी योग नाम का शब्द हम सुने हैं, और प्रायः जब हम यह योग सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग धारणाएं आने लगती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ यह है हिमालय में जाकर बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाना, बाल बढ़ाना और ध्यान करना, कुछ लोग इसे योग मानते हैं। कुछ लोग सिर नीचे और पांव ऊपर करके खड़े रह जाना, इसे योग कहते हैं। कुछ लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सांस लेकर छोड़ते हैं और कुछ उठपटांग करते हैं, उसे योग मानते हैं। परंतु अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लोग योग करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी हमारी है भवरोग। और उस भवरोग से दूर होने के लिए यह छोटा मोटा योग काम नहीं करेगा। तो इस योग को समझने के लिए सबसे पहले हमें योग का अर्थ क्या होता है यह जानने की आवश्यकता है। योग शब्द जो है यह संस्कृत शब्द है, और संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वे धातु से बनते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है, और युज धातु का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, इंग्लिश में उसे टू जॉइंट कहते हैं। दो चीज को जोड़ने की क्रिया को योग कहा जाता है। तो वास्तव में योग का अर्थ है भगवान और इस जीवात्मा को जोड़ने की क्रिया को, भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करने की क्रिया को योग कहा जाता है। आज तक इन चार दिनों में हमने इस संसार में दुखी होने के कई सारे कारण सुने, हम क्यों दुखी हैं, दुखी होने के बहुत कारण हम सुने। परंतु हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा मूल कारण अगर कोई है तो वो है भगवान से वियोग हो जाना। भगवान से वियोग होने के कारण हम इस संसार में दुखी हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण भूली सही जीव अनार्दिर बहिमुख अत एवं माया तारे संसार एर दुख। कृष्ण को भूलकर कृष्ण से वियोग होने के कारण माया के द्वारा इस संसार में हमें दुख मिलता है, और जब तक कृष्ण के साथ पुनः योग नहीं होगा तब तक सुखी हम नहीं होंगे। कितना भी प्रयास हम कर ले, जब तक कृष्ण के साथ योग नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बहुत धनी माता पिता का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गया, और मेले में तो बहुत भीड़ होती है। तो उस बहुत भीड़ में उस बच्चे ने अपने पिता की उंगली जो पकड़ कर रखी थी उंगली छोड़ दी, और उस भीड़ में वह लड़का घूम गया। उस पिताजी ने अपने पुत्र को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, परंतु उसका पुत्र नहीं मिला, और वह बालक घूमते घूमते उस मेले से रास्ते में आ गया, और रास्ते में चलते चलते बेचारा वह रो रहा था। तो रोते रोते किसी ने उसे देखा कि छोटा सा बालक है और बहुत रो रहा है, लगता है ये भूखा हो गया है, इसे भूख लगी है। तो किसी व्यक्ति ने रास्ते से दो वड़ा पाव खरीद कर इस बालक को दिया कि आप ये वड़ा पाव खाओ। लेकिन फिर भी वो बालक रोता रहा, रोना बंद नहीं किया। तो आगे चलते चलते जब जा रहा था तो किसी ने देखा कि अब बहुत ठंड चल रही है, लगता है इस बालक को बहुत ठंडी लग रही है, इसलिए इसे कुछ कंबल देना चाहिए। तो किसी ने उस बालक को कंबल दे दिया, लेकिन कंबल लेकर भी वह बालक शांत नहीं हुआ, वह रोता ही रहा। आगे चलकर किसी ने देखा, कोई रईस ने देखा कि बालक इतना छोटा है और रो रहा है, लगता है इसके पास पैसे नहीं है। तो उस व्यक्ति ने अपने जेब से 100 रुपये निकालकर उस बालक को दिया और वह 100 रुपया लेकर भी वह बालक तो रोता ही रहा, शांत नहीं हुआ। और जब वो बालक जा रहा था तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बालक को देखा और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि ये बालक रो रहा है और उसकी वेशभूषा से लगता है कि ये बालक कोई साधारण घर का बालक नहीं है, कोई बड़े घर का बालक लगता है। इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति उस बालक को लेकर पुलिस स्टेशन में चला गया और पुलिस स्टेशन में जाकर कहा कि ये बालक रो रहा है, लगता है किसी माता पिता से ये अलग हो चुका है, इसलिए जरा तुम देखो। तब तो पुलिस वाले कहने लगे, हम इस बालक को ही ढूंढ रहे थे, इसके पिता बहुत बड़े अमीर हैं और इसके पिता ने पूरे देश के पुलिस स्टेशन में इस यह रिपोर्ट लिखा दी है। तो तुरंत पुलिस वालों ने उसके पिता को फोन किया और 10 मिनट में उनके पिता बहुत बड़ी गाड़ी लेकर वहां पर आ गए। और जब उनके पिता वहां पर आए और उस बालक को मिले और उस बालक को लेकर चले गए, तब उस बालक रोना बंद किया। अब देखिए, वह बालक अपने पिता से जब से अलग हुआ तब से रोना शुरू किया था, जब तक अपने पिता से वापस नहीं मिला तब तक वह रोना बंद नहीं किया। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा परम परमात्मा से, हम हमारे परम पिता से अलग होकर दुखी है और इस दुखी होकर सुखी होने के लिए अगर धन मिल जाए या गाड़ी मिल जाए या कंबल मिल जाए या कितना भी सुंदर भोजन मिल जाए, ये सब कुछ भी मिल जाए, फिर भी उस बालक की तरह हम रोते ही रहेंगे, कोई संतुष्ट नहीं होगा। और ये रोना तब तक होगा जब तक हम हमारे परम पिता को नहीं मिलते हैं। तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख है कि हम हमारे इस परम पिता भगवान से अलग हो चुके हैं। तो भगवान से हम अलग हो चुके हैं, भगवान से वियोग हो गया है, भगवान से पुनः योग प्राप्त करने की, भगवान से जोड़ने की विधि को योग कहा जाता है। और भगवत गीता में इस कई प्रकार के योग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। सबसे पहले इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बारे में जानते ही नहीं हैं कि हम भगवान से वियोग हो चुका है, इस वियोग के कारण दुखी हैं और योग नाम की चीज भी कोई होती है। कुछ लोग ऐसे नास्तिक हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के नाम पर, कर्म पर, किसी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। परंतु उससे कुछ ऊपर उठे हुए लोग हैं जिसे थोड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, वे लोग सुखी होने के लिए देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वेदों में सुखी होने के लिए जो कर्मकांड लिखा गया है उस कर्मकांड को फॉलो करते हुए वे अपनी इच्छा को पूरी करते रहते हैं और ऐसे लोगों को कर्मकांडी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार जीवन व्याप्त तो करते ही हैं, पर शास्त्र के अनुसार वेदों में यह देखते हैं कि भौतिक जगत में रहकर भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ये लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं और देवी देवताओं की आराधना करके भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं। ऐसे भौतिक सुख की, देवी देवताओं की आराधना करके सुख प्राप्त करने वाले, इच्छा करने वालों को कर्मकांडी कहा जाता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। कहते हैं जो लोग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं और भौतिक भोग की इच्छा करते हैं वे लोग मूर्ख हैं। मैं नहीं कह रहा हूं गीता, क्योंकि गीता कोर्स है इसलिए भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं। आप कहोगे मूर्ख क्यों है, एक दृष्टांत आप देख लीजिए। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम भगवान से अलग हो चुके हैं और इस भौतिक जगत में फंस गए। जब तक इस भौतिक जगत से हम बाहर नहीं निकलेंगे, भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान से योग नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। और भगवान ने इस भौतिक जगत बनाने वाले ने भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। है अर्जुन, ये संसार दुखालय है, दुख का आलय है, और ये संसार मैंने एक जेल रूपी ये संसार बनाया है। ये संसार एक जेल है, और जेल में रहकर कोई सुखी हो सकता है? कोई कितना भी सुखी होने का प्रयास करे, परंतु जेल में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो एक दृष्टांत के तौर पर, जैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करके कोई भौतिक इच्छा करता है, तो भगवान उस व्यक्ति को क्यों मूर्ख कहते हैं? तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक बहुत बड़ी सेंट्रल जेल थी, और उस सेंट्रल जेल में सभी उम्र कैद की सजा भोगतने वाले को डाला जाता है। कई सारे लोग, कई सारे कैदी उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे। तो एक दिन एक नेता का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के उपलक्ष पर नेता ने कहा कि आज मैं उस उम्र कैद की सजा भोगतने वालों की जेल में जाना चाहता हूं और उनकी जो इच्छा हो वे मैं पूर्ण करना चाहता हूं। तो वे नेता उस जेल में गए और जेल में जाकर सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया और सबकी एक एक इच्छा जानने लगे और सबकी इच्छा पूर्ण करते रहे। तो हम सभी कैदियों के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन चार पांच कैदियों के बारे में जानेंगे। वे नेता वहां पर खड़े थे, सब कैदी आ रहे थे और नेता पूछ रहे थे तुम्हें क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो कैदी था उसने कहा कि मुझे जो चाहिए वे आप दोगे? नेता ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कई सालों से इस जेल में खिचड़ी खा खा कर थक गया हूं, कुछ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पाव भाजी इत्यादि कुछ प्रबंध हो जाए तो मजा आ जाए। नेता ने कह दिया अपने कर्मचारी को कल से इसे खाने पीने का बंदोबस्त कर दो, चलो पास। अब दूसरा व्यक्ति आया, नेता ने कहा आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा यहां पर मच्छर बहुत काटते हैं, कृपया करके कछुआ छाप या गुड नाइट का कोई प्रबंध कर दीजिए ताकि इस मच्छर से छुटकारा पा सके। नेता ने कहा ठीक है, अपने कर्मचारी को आप यहां पर लगा दो। अब तीसरा व्यक्ति आया, नेता ने तीसरे व्यक्ति को पूछा आपको क्या चाहिए? उसने कहा देखो मैं फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति हूं और रोज नए नए कपड़े पहनता था, परंतु यहां जब जिस दिन से यहां पर आया हूं एक ही कपड़े पहनने मिलता है, कुछ कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तो आनंद आ जाता। नेता ने कहा इसे 500 जोड़ी कपड़े दे दो और इसे सुखी कर दो। कितने व्यक्ति हुए? तीन व्यक्ति। अब चौथा व्यक्ति आया, नेता ने कहा आपको क्या चाहिए? उस चौथे व्यक्ति ने कहा देखो यहां पर बिजनेस करने का कोई सोर्स नहीं है, इतना थोड़ा धन थोड़ा बैलेंस हो जाता तो आनंद आ जाता, अगले जीवन के लिए कोई तकलीफ नहीं रहती। नेता ने कहा कितना चाहिए? उसने कहा 1 करोड़ चाहिए। नेता ने कहा ठीक है इसे 1 करोड़ दे दो। तो इस प्रकार से पांचवा व्यक्ति आया, नेता ने कहा आपको क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे जो चाहिए आप दे दोगे? नेता ने कहा हाँ, जो चाहिए वो मैं देने के लिए आया हूं। उसने कहा जो चाहिए वो दे दोगे? नेता ने कहा हाँ। तो उस कैदी ने कहा कि अगर आपको देना ही है तो मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अब आप ही बताइए ये पांचों में से बुद्धिमान कौन है? क्यों? क्योंकि वह जेल से निकलना चाह रहा है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भगवान की बनाई हुई एक जेल है, और इस संसार में रहकर देवी देवताओं की उपासना करके धन चाहता है, गाड़ी चाहता है, खाना चाहता है, कपड़ा चाहता है, तो वे सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि जेल में रहते हुए कुछ भी मिल जाए कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने के लिए उस जेल से बाहर निकलना है, ठीक उसी प्रकार वास्तविक परम सुखी होने के लिए इस भगवान की बनाई हुई इस भौतिक जगत की जेल से हमें निकलना होगा। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भौतिक भोग को प्राप्त करने में पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्र कर्मकांडी कहते हैं। इस कर्मकांडी हजारों हजारों जन्मों के बाद जब उनकी बुद्धि शुद्ध होती है तब ये लोग निष्काम कर्म करने लगते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि जब ये लोग देखते हैं कि इस प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त करके हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए कर्म तो करना चाहिए परंतु फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, तो कुछ लोग निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। कर्म तो करते हैं परंतु कर्म की आशा नहीं रखते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचरन्, तुम कर्म करो फल की आशा मत रखो। तो बस इस प्रकार से लग जाते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, फल की आशा नहीं रखते। परंतु वास्तविक भगवान कहते हैं कि वास्तविक कर्मयोगी, वास्तविक निष्काम कर्मयोगी वो है जो मेरे लिए कर्म करता है। इस संसार में कुछ लोग बस ऐसे ही कर्म करते हैं, फल की आशा नहीं रखते हैं, परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कर्म करना और उस फल को भगवान को अर्पण करना, इसे कर्मयोगी कहा जाता है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोगी धीरे 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 हजारों हजारों जन्मों के बाद जब उनकी बुद्धि शुद्ध होती है तब यह निष्काम कर्मयोगी ज्ञान योगी बनता है। और ज्ञान योगी के स्तर में जब आता है तब दार्शनिक ज्ञान के द्वारा वह भगवान के ब्रह्म स्वरूप को जानने लगता है। ज्ञान योगी जो है वे भगवान के ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं और ब्रह्म के रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं। परंतु भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अवत्याही गतिर दुखम देह वाप्यते। इस मार्ग में ज्ञान योग में बहुत ही क्लेश है, बहुत ही दुख भोगतने पड़ते हैं, इसलिए ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ रास्ता अगर कोई है तो वो है अष्टांग योग। ज्ञान योग, ज्ञान योगी हजारों हजारों जन्मों के बाद जब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जब वे बुद्धि में आगे बढ़ते हैं तो भगवान को ब्रह्म के रूप में देखने वाले ज्ञान योगी अब भगवान को धीरे धीरे परमात्मा के रूप में समझने लगते हैं और उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए योग करते हैं। तो योग कई प्रकार के हैं, योग की 8 सीढ़ियां है, 8 प्रक्रिया है। योग करने के लिए भगवान ने भगवद गीता में बहुत ही सुंदर अष्टांग योग का वर्णन किया है। सबसे पहले यम, इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्टेज है यम। यम का अर्थ होता है ऐसे कुछ कार्य जो नहीं करना है। ध्यान योग करने के लिए, भगवान से भगवान की प्राप्ति करने के लिए इस यम के स्तर में कई सारे नियमों का पालन करना होता है। उनमें से भगवान कहते हैं नात्य शंतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनुष्यत न चांति स्वप्रशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। सबसे पहले इसका नियम है कि जरूरत से अधिक खाना नहीं चाहिए और जरूरत से अधिक सोना नहीं चाहिए। यह है अष्टांग योग करने का पहला यम जो नहीं करना है। और भी ऐसी कई चीज हैं जो नहीं करनी है। तो यम, जब इस यम, जब जो नहीं करना है व्यक्ति या नहीं, भगवान ने जो नहीं करने के लिए कहा है वह सब त्यागने लगता है तब वह नियम में बनता है। तब भगवान कुछ नियम बताते हैं, उस नियम का पालन करना होता है। नियम क्या है तो गीता में भगवान कहते हैं योगी युजित सतत मात्मा नम सहित स्थित एकाकी यज चितात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं नियम में शरीर मन और आत्मा को परमात्मा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए और एकांत स्थल में चले जाना चाहिए। यह है नियम। जब इस प्रकार से अभ्यास करते हुए उसमें पूर्ण हो जाते हैं, तब तीसरा स्तर है आसन। योग करने के लिए ठीक से आसन बिठाना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन मात्मान नात्यु चित्रम नाति नीचम चेला जिन कुशोत्तरम। सबसे पहले पवित्र जगह में जाकर वहां पर कुश घास बिठाकर उसके ऊपर मृग चर्म डालकर उसके ऊपर योग करने के लिए बैठना चाहिए। इस प्रकार से आसन में जब व्यक्ति बैठता है, तब इसका चौथा स्तर है प्राणायाम। प्राणायाम के तीन स्टेप है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का अर्थ होता है धीरे से सांस लेना, रेचक का अर्थ होता है धीरे से सांस छोड़ना। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम का जब अभ्यास हो जाता है, तब पांचवा स्तर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को भौतिक विषयों से मुक्त करना। मन और इंद्रियों को भौतिक विषयों से मुक्त करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। और जब मन और इंद्रिय भौतिक विषयों से पूरी पूरी मुक्त हो जाती हैं, तब उसे धारणा करनी पड़ती है। धारणा किसकी करते हैं? कहते समम काय शिरोग्रीवम धारयन चल स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सव स्वदिशाश्चान अवलोकयन। अपने नेत्र को इस नाक के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाते हुए भगवान कहते हैं, उसे मेरी धारणा करनी चाहिए, मुझ परमात्मा के रूप में मेरी धारणा करनी चाहिए। और धारणा करते करते जब उसमें स्थित हो जाते हैं, तब उस भगवान के परमात्मा रूप को जो धारण किए हैं उस पर उसका ध्यान लग जाता है, जिसे ध्यान कहते हैं। और जब वो ध्यान योगी बन जाता है, भगवान का ध्यान धीरे धीरे करने लगता है, तब ऐसे योगी को कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। देखिए, अब तक उसने पूर्ण अष्टांग योग नहीं किया है, लेकिन पूर्ण अष्टांग योग के सिद्धि तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उसे कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। और वे शक्तियां है अणिमा लघिमा प्राप्ति ईशिता वशिता काम वसायना प्राक्रम्य इत्यादि। जब कोई इस प्रकार से योग साधना करता है, तो उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वे हवा से भी हल्का हो सकता है और पहाड़ से भी भारी हो सकता है, और वे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, और वे चमत्कार के द्वारा कुछ भी फल फ्रूट इत्यादि बाहर निकाल सकता है, चाहे तो वो पानी पर भी चल सकता है इस विधि के द्वारा। परंतु यह विधि योगियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। अगर योगी इस सिद्धियों में फंस जाता है, तो आगे योग में पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इस संसार में लोग इस स्थिति पर तो पहुंचते हैं, परंतु इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने पर बस चमत्कार करने लगते हैं और दुनिया वालों को ठगने लगते हैं। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके दुनिया वालों को ठगते हैं और अपने आप को भगवान बताते हैं, अपने आप को गुरु बताते हैं। वास्तव में वो गुरु और भगवान नहीं है, वह इस सिद्धि के द्वारा, इस योगाभ्यास के द्वारा वे कुछ चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। परंतु उस चमत्कार से वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है भगवान के साथ योग करने का, वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर खड़े थे, और गंगा नदी के तट से गोद्रुम द्वीप में जाने के लिए बीच में एक नाव करनी पड़ती है। 5 मिनट नाव में बैठकर उस पार जाना होता है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ खड़े थे, तो उतने में ऐसे ही एक योगी आए जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बहुत बड़ी जटा थी। प्रभुपाद जी और उनके शिष्य वहां पर खड़े थे, और ऐसे ही एक योगी आए और देखते ही देखते पानी के ऊपर चलते चलते दूसरे पार चले गए। तब प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उन्होंने पूछा, प्रभुपाद हम भक्ति योग करते हैं, गीता में भगवान भक्ति योग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, परंतु हम यहाँ पर 10 मिनट से नाव की वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, और ये योगी चलते चलते उस पार चला गया। तो प्रभुपाद जी ने उसे इतना ही कहा कि इस पार से उस पार जाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो उस वक्त 10 पैसे उनका चार्ज था। तो शिष्यों ने कहा 10 पैसे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस पार से उस पार जाने के लिए केवल 10 पैसे लगते हैं। यह योगी ने इस 10 पैसे का काम बनाने के लिए पूरा जीवन बिता दिया, और पूरा जीवन बिताने के बाद क्या प्राप्त हुआ जो हम 10 पैसे में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसी सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वास्तव में जो भजन करता है, भक्ति करता है, ऐसी सिद्धि तो उसके चरणों में पड़ी रहती है, परंतु भक्त इसे ठुकरा देता है, इसे रखता भी नहीं है। तो तात्पर्य यह है, चमत्कार करने वाले ऐसे योगी ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त करने लगते हैं, परंतु वे आगे भगवान से योग करने की इस रीत में वे अटक जाते हैं। परंतु जो लोग दृढ़ रहते हैं, इस सिद्धि को ठुकरा देते हैं, वे लोग ध्यान करते 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 भगवान की समाधि में लग जाते हैं, भगवान का दर्शन करने लगते हैं और समाधि में स्थित हो जाते हैं। और उस समाधि की अवस्था में यत्रो परम मते चित्तम निरुद्ध योग सेवया यत्र चेवात्म आत्मानं पश्यान् मन्ति तुष्टति। भगवान कहते हैं उस समाधि की स्थिति में वो व्यक्ति मेरा दर्शन करता है, मुझ परमात्मा के स्वरूप को देखता है, और उस समाधि की स्थिति में इस जगत के सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है। इस अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति केवल संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है, सुख तो अभी आगे चलकर मिलेगा। तो इस प्रकार से वे दुखों से मुक्त हो गया, और इस दुखों से मुक्त होकर इस समाधि में पूर्णता प्राप्त करके वे भक्ति योग करने के लिए योग्य बन जाता है। अष्टांग योगी अब भक्ति योग करने के लिए परफेक्ट योग्य बन जाता है। फिर अष्टांग योग करने के बाद वह भक्ति योग में लगता है, और भक्ति योग करके वे भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए गीता में भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि कई सारे पापियों से अच्छे है कर्मकांडी, कई सारे कर्मकांडियों से अच्छे है निष्काम योगी, और निष्काम योगी हजारों हजारों जन्मों के बाद ज्ञान योगी बनते हैं, और ज्ञान योगी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते। ऐसे ज्ञान योगी मुझ ब्रह्म को देखते हैं और धीरे धीरे परमात्मा के रूप को देखते हैं, परंतु बहुनाम जन्मनाम अंते बहुत बहुत जन्म के बाद मुझ ब्रह्म को और परमात्मा के रूप में देखने वाले ऐसे लोग जब भक्ति योग प्राप्त होता है, तब मुझे समझने लगते हैं और वे जानने लगते हैं कि भगवान मैं केवल ब्रह्म नहीं हूँ, केवल परमात्मा नहीं हूँ, कृष्ण एक साकार स्वरूप है, और साकार स्वरूप से अपने निज धाम में गोलोक धाम में रहते हैं, और गोलोक धाम में अकेले नहीं अपने गोप और गोपियों के साथ रहते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत, गोप और गोपियों के साथ रहते हैं और जन्म भी लेते हैं देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में, और मुझे वासुदेव मानते हैं, और यह भी समझने लगते हैं कि सभी संसार, ये जो भी संसार है, मुझ वासुदेव से चल रहा है। जब व्यक्ति इस प्रकार से मैं वासुदेव ही सब कुछ हूँ और मेरे द्वारा सब कुछ चल रहा है, इस प्लेटफॉर्म पर जब वह व्यक्ति आ जाता है, तब भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त योगी व्यक्ति महात्मा बन जाता है, और ऐसा महात्मा मेरे लिए भी दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, ऐसा भक्त योगी मुझ वासुदेव को सर्वमिति मानने वाला मेरे लिए भी दुर्लभ है। इसलिए भक्ति योग जो करता है, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्ध्यते, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को वासुदेव के रूप में, भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है और भक्ति योग में संलग्न हो सकता है। तो भक्ति योग में इस प्रकार से कर्मकांडी जब निष्काम कर्म योगी बनते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और फिर बाद में भक्ति योग में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति योग, भक्ति करने के लिए, भक्ति योग करने के लिए यह सीढ़ी है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, यम नियम आसम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और फिर भक्ति योग। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग तक पहुंचने के लिए हमें यह सब स्तर से पास होना होगा। परंतु भक्ति योग करने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है। जैसे मान लीजिए 25वें माले पर आपको जाना हो तो 25वें माले पर जाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? सीढ़ी होती है और लिफ्ट होती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति योग तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो है इस कर्म योग और ज्ञान योग अष्टांग योग के द्वारा भक्ति योग तक पहुंचना। तो ये ज्ञान योग कर्म योग और अष्टांग योग के द्वारा भक्ति योग तक पहुंचने की जो विधि है वो है सीढ़ी से जाने की विधि। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट में बैठ जाता है, स्विच दबाता है, 25वें माले पर पहुंच जाता है। और भगवान भी कहते हैं कि वास्तव में बुद्धिमान वो है जो डायरेक्ट भक्ति योग स्वीकार करता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कह दिया योगिनाम अपि सर्वेषां मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तम मत। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा स्मरण करता है और मेरी भक्ति करता है। सभी योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी है भगवान की भक्ति करने वाला योगी। इसलिए भगवद गीता में भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ योग है और हम सभी व्यक्ति को भक्ति योग करना चाहिए। और भक्ति योग के द्वारा ही हम जो भगवान से वियोगित हुए हैं, भगवान से जो वियोग हुआ है वह योग पुनः स्थापित कर सकते हैं। केवल भक्ति योग ही इसे करने के लिए समर्थ है। तो भक्ति योग हम सबको करना चाहिए। और भक्ति योग के द्वारा कैसे हम भगवान की प्राप्ति करते हैं? भक्ति योग श्रद्धा से प्राप्त होता है। श्रद्धा जब हम रखते हैं तब साधु संघ होता है। साधु संघ के द्वारा भजन क्रिया होती है। भजन क्रिया के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं, दुख हैं, पाप हैं, ये सब कुछ निकल जाते हैं। और अनर्थ जब सब पाप और अनर्थ निकल जाते हैं तब भगवान की भक्ति में निष्ठा बढ़ती है। और जब निष्ठा पूर्ण हो जाती है तब रुचि बढ़ती है और बाद में आसक्ति हो जाती है। बाद में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगता है और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम के स्तर में भगवान से योग हो जाता है। इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने की यह विधि है। और भक्ति योग जो है 9 प्रकार की भक्ति हमारे आचार्य ने बताई है। वैसे भक्ति का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी भक्ति का अर्थ करते हैं एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्रेममयी सेवा करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना उसे भक्ति कहा जाता है। तो भगवान की सेवा 9 प्रकार से की जाती है जिसे हमारे शास्त्र में नवधा भक्ति कहते हैं। भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है और वेद शास्त्र और परम शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज इस नवदा भक्ति को कहते हुए कहते हैं शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 चीज के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान से योग कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए इस 9 चीज को हम संक्षिप्त में जान ले। नवदा भक्ति, 9 भक्ति में सबसे पहला अंग है श्रवण। श्रवण का अर्थ है भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनना। यह है सबसे पहली भक्ति। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान का नाम बोलना और भगवान की कथा बोलना। जैसे हरे कृष्णा नवदा भक्ति में तीसरी भक्ति है स्मरण। हमने जो भी बोला है, जो भी सुना है उसे मन में हृदय में स्मरण करना, सोचना, उसे स्मरण कहते हैं। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। भगवान के चरण की सेवा करना, इसे पाद सेवन कहते हैं। पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, इसे अर्चन कहते हैं। छठी भक्ति है वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, ये छठी भक्ति है। और आठवीं भक्ति है दास्यम, भगवान का दास बनकर रहना, इसे दास्यम कहते हैं। और हाँ, सातवीं भक्ति है दास्यम, आठवीं भक्ति है साख्यम, भगवान के साथ साख्य भाव में रहकर भगवान की पूजा सेवा करना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम का अर्थ होता है भगवान के लिए हमारा सब कुछ देना, दे देना, ये आत्म या शरीर भी भगवान के लिए दे देना, इसे आत्मनिवेदनम भक्ति कहा जाता है। तो ये नौ प्रकार की भक्ति के द्वारा हम भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भगवान को प्रसन्न करके हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तब किसी का प्रश्न होगा कि यह नौ प्रकार की भक्ति आपने बताई, तो यह नौ प्रकार की भक्ति करके कोई भगवान को प्राप्त हुआ है? ऐसा कोई है आपके पास दृष्टांत, उदाहरण कोई है? वैसे तो कई सारे लोग हैं जो यह भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए, परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो पहली भक्ति श्रवण, जो भगवान की कथा और भगवान का नाम सुनना, श्रवण भक्ति करके महाराज परीक्षित भगवान के धाम में चले गए। आप सब जानते होंगे केवल 7 दिन और 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुने और केवल श्रवण भक्ति करके भगवान के धाम में चले गए। यह नवदा भक्ति में से प्रत्येक भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यह नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी किया जाए तब भी भक्ति योग से माना जाता है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो परीक्षित महाराज श्रवण करके भगवान को प्राप्त हुए और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके भगवान को प्राप्त हुए। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन भक्ति के आचार्य। तत्पश्चात तीसरी भक्ति है स्मरणम, स्मरणम भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। चूंकि प्रहलाद महाराज असुर कुल में थे इसलिए प्रकट सबके सामने माला नहीं जप सकते थे। संसार में भी, इस कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर अपनी सास के सामने या अपने पिताजी के सामने यह भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज बहुत बड़े आचार्य हैं कि अगर लोगों के देखते हुए नहीं कर सकते तो मन में कीजिए, स्मरण कीजिए। स्मरण के द्वारा भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। और यह है तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पाद सेवन करके लक्ष्मी जी भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर ली। लक्ष्मी जी का जब आप फोटो देखेंगे तो निरंतर भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगी रहती। पांचवी भक्ति है अर्चन, अर्चन भक्ति के आचार्य है पृथु महाराज। पृथु महाराज भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त हो गए। और छठी भक्ति है वंदनम, प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। महाभारत में बहुत ही सुंदर कहते हैं 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेघ करने वाला व्यक्ति दूसरी बार जन्म निश्चित रूप से लेगा। अश्वमेघ कार जानते हैं, अश्वमेघ जो कलयुग में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा 10 अश्वमेघ भी अगर कोई कर ले फिर भी उसे पुनरेति जन्म, फिर से जन्म लेना होगा। परंतु एक बार भी अगर कोई भगवान को प्रणाम कर दे, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसे फिर से जन्म लेना होगा। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान और गुरु के चरणों में अपना यह सिर नहीं झुकाते हैं तो ऐसे सिर को तो काट देना चाहिए। जो सिर कटी संबर तुला जोन नमत गुरु हरिपद मूला, जो गुरु और भगवान के चरणों में अपना सिर नहीं झुकाता है तो वो सिर कुछ काम का नहीं है। क्योंकि यह सिर मिला है भगवान और गुरु के सामने झुकाने के लिए, यह हाथ मिले हैं भगवान के सामने जोड़ने के लिए। करोश्च तत्कर्म करो मनश्च, और यह मन मिला है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो भगवान को वंदन करना यह भी एक भक्ति है। और भगवान को वंदन करके अक्रूर जी भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किए। वंदन भक्ति के आचार्य है अक्रूर जी। और तत्पश्चात है दास्यम, दास्यम भक्ति के आचार्य है हमारे हनुमान जी, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य है। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी माला नहीं जपी, बस उनके मन में एक अहंकार था कि मैं भगवान श्री रामचंद्र का दास हूं, यही हनुमान जी की भक्ति थी। हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य है। और चूंकि रामनवमी बहुत करीब, क्षमा कीजिए, दशहरा बहुत करीब आ रही है, और इन्हीं दिनों जब रावण का वध होने वाला था उसके कुछ दिन पहले हनुमान जी गए थे लंका में देखने के लिए क्या हाल है, सीता जी का, मैया का क्या हाल है। हनुमान जी को देखने के लिए जब भेजा और वहां जाकर हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में सीता को रखा है। हनुमान जी सीता जी को जब मिले तो हनुमान जी ने कहा कि मैया, बहुत जल्द भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे, आप डरो मत। और मैं क्या कहूँ, भगवान को आने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, एक सेकंड में आपको मैं उठाकर वहां पर लेकर जा सकता हूँ, परंतु भगवान की, प्रभु की आज्ञा नहीं है। अगर आते वक्त एक बार भी भगवान ने कह दिया होता तो मैं आपको अभी लेकर जा सकता था, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है, परंतु डरो मत, बहुत कम समय में वे आएंगे। उतना कह के हनुमान जी कहने लगे कि मैया, बहुत भूख लगी है, यहाँ से जब से मैं यहाँ लंका में आया हूँ तो सभी स्टॉल में गया, दुकान में गया, नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं दिखा। सब लोग राक्षस से रहने वाले, नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाने की इच्छा हुई है। तो सीता जी ने कहा, बाजू में एक बगीचा है, उस बगीचे में जाकर थोड़ा भोजन प्रसाद कर लो, परंतु ध्यान रहे वहां पर रावण के बड़े बड़े सैनिक हैं, इसलिए जो फल नीचे पड़े हैं वही खाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, परंतु हनुमान जी स्वभाव से मजबूर थे, नीचे पड़े हुए फल खाने की बात तो दूर रही, सभी पेड़ और पौधे को हिला हिला कर गिराने लगे और पेड़ को गिरा कर बाद में फल खाने लगे, और रावण का जो वो बगीचा था बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। और जब रावण का वो बगीचा उजाड़ा तो छोटे मोटे सैनिक आए और हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगे। हनुमान जी किसी का हाथ पकड़े, किसी का पांव पकड़े, किसी की गर्दन, सबको घुमा घुमा कर मार दिए। रावण को जब पता चला कि यह वॉचमैन को मार दिया है हनुमान ने, तो रावण ने सिक्योरिटी को भेजा, जो बड़े बलशाली सैनिक थे उनको भेजा, उसे भी हनुमान जी ने खेलते खेलते मार दिया। तब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। तब अंत में रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ को भेजकर कहा कि अब तुम उसे मारना मत, उसे बांध कर लेकर आओ ताकि मैं भी देख सकूं कि एक बंदर इतने लोगों को कैसे मार दिया, उस अद्भुत बंदर को मैं भी देखना चाहता हूं। तब मेघनाथ आए और हनुमान जी सोचे कि रावण को मिलने के लिए, रावण को देखने के लिए इनसे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए मेघनाथ के हाथ से वे बंध गए, नहीं तो मेघनाथ को भी मार देते थे, परंतु उसे नहीं मारे और मेघनाथ के पास से वे बंध गए। और मेघनाथ अपने पास में बांधकर हनुमान को रावण के सामने लेकर जा रहा था। तो ये कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे। उस वक्त शिव जी बहुत ही सुंदर पार्वती जी को कहे हैं कि हे देवी, हे सती, हे पार्वती, तुम यह मत समझो कि हनुमान जी एक तुच्छ असुर के हाथ में बंध गए हैं। तुम जरा विचार करो, जासु नाम जपु सुनु भवानी, जिसका नाम लेकर इस संसार के करोड़ों करोड़ों जन्मों के बंधन व्यक्ति तोड़ सकता है, उस प्रभु की सेवा, उस प्रभु का कार्य करने जो निकला है, उसे कोई साधारण व्यक्ति बांध सकता है? कभी नहीं बांध सकता है। ये तो प्रभु का कार्य करने निकला है, उसे देखना है कि रावण किस हाल में है, कौन है, इसलिए ये बंध गए। तो बंध कर जब रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा रखा और रावण ने कहा, अरे मूर्ख, कहलंकेश कवन ते कीसा, तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम्हारा जरा इंट्रोडक्शन तो दो, तुम कौन, कहां पर रहने वाले हो, और मुझे यह बताओ कि तुमने किसकी आज्ञा से इस वन को उजाड़ा है, क्यों तुमने हमारे इस वन को उजाड़ दिया। और लगता है, रावण ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, अगर तुम मुझे जानते होते तो यह काम करने का स्वप्नों में भी नहीं सोचते, इसलिए हे मूर्ख, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे सैनिकों को क्यों मारा, और सबसे पहले तुम अपनी पहचान दो, तुम हो कौन। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें मेरी पहचान ही चाहिए तो जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारी पहचान थोड़ी बड़ी है, लंबी है। तब हनुमान जी अपनी पहचान देने लगे। हनुमान जी कहे, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विचरित माया। है रावण सुनो, मेरी पहचान चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसकी शक्ति से पलते हैं चलते हैं, और उस ब्रह्मांड का सर्जन पालन और जो भी उसको चलाने वाले प्रलय करने वाले, ये सब को शक्ति देने वाले जो है, और जिस व्यक्ति की शक्ति से अनंत शेष अपने सिर के ऊपर अनंत ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं, और जिसने बाली खर दूषण त्रिश्रा ये सब का वध किया, और हे रावण जिसकी शक्ति, जिसकी एक छोटी सी शक्ति से तू सीता का हरण करके यहाँ पर लाया है, उस प्रभु श्री रामचंद्र का मैं दास, मैं दूत हूं। बस यही है हनुमान जी की भक्ति। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हूं, दास हूं, दासोस्मी, मैं दास। तो दास्य भक्ति के आचार्य है हनुमान जी। और तत्पश्चात आठवीं भक्ति है साख्य। साख्य भक्ति के आचार्य है अर्जुन जी। अर्जुन ने दिखा दिया कि किस प्रकार भगवान के साथ साख्य भाव रखना चाहिए। अर्जुन जब सोते थे, हम जब सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं, परंतु अर्जुन जब सोते थे तो उसके सांस से, उसके मुख से कृष्णा कृष्णा शब्द निकलते थे। और नौवी भक्ति है आत्मनिवेदनम, भगवान के लिए अपना सब कुछ दे देना। वास्तव में सबसे मुश्किल कार्य है तो यह कार्य, आत्मनिवेदन। अपने जेब से किसी को 10 रुपया देना, उसमें भी 100 बार सोचते हैं, और उसमें भी अपना सब कुछ दे देना भगवान के लिए, ये तो बहुत मुश्किल है। और ऐसी भक्ति के आचार्य है बलि महाराज। बलि महाराज भगवान को देने के लिए अपने गुरु की आज्ञा को तोड़ दिए, परंतु अपना सब कुछ दे दिए भगवान ने, भगवान को। भगवान वामन जब आए बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज को कहा कि मुझे केवल 2 पांव भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा, 2 पांव तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो भगवान वामन ने कहा, बस 2 ही पांव चाहिए। बलि महाराज ने संकल्प किया, गुरु शुक्राचार्य ने ना कहा, फिर भी बलि महाराज ने दे दिया, और 1 पांव में नीचे के समस्त लोग को भगवान ने नाप लिया। क्षमा कीजिए, 3 पांव मांगा था, 1 पांव से नीचे के लोगों को, 2 पांव से ऊपर के लोगों को, 3 पांव भगवान ने कहा रखूं। तब बलि महाराज ने कहा, बताओ, जो व्यक्ति दान देता है, जो दान देता है वह दान बड़ा है या दान देने वाला व्यक्ति बड़ा है? भगवान ने कहा, दान देने वाला व्यक्ति बड़ा है। तो प्रभु आपने तो छोटी वस्तु मांग ली है, दान देने वाला मैं बड़ा हूं और मैं खड़ा हूं, अब 3रा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार से बलि महाराज ने आत्मनिवेदन कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया भगवान को। तो भगवान की यह 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है, 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। परंतु इस कलयुग में प्रैक्टिकल भक्ति अगर हम कर सकते हैं तो वह श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन के द्वारा हम इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही आसान से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। और किस प्रकार से श्रवण और कीर्तन की क्या महिमा है, किस प्रकार से हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में यह कैसे उतारना चाहिए, यह हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न योग का हमने श्रवण किया, और सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। और भक्ति योग 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 प्रकार की भक्ति में से सर्वश्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन। किस प्रकार से हमें श्रवण और कीर्तन करना है, इसका श्रवण हम कल करेंगे।